ये आकाशवाणी है। अब आप नेहा गोस्वामी से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट करके पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। राजस्थान के बीकानेर में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि सरकार ने सशस्त्र बलों को कार्रवाई करने की पूरी छूट दी थी, इससे तीनों सेनाओं को अपने लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिली।
22 अप्रैल को आतंकवादियों ने धर्म पुछकर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। हर देशवासी ने एकजुट होकर संकल्प लिया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे। तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत सिर्फ पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर पर केंद्रित होगी। इससे पहले बीकानेर के पलाना में प्रधानमंत्री ने 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। श्री मोदी ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिलों में 103 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का लोकार्पण भी किया। भारत ने फिर कहा है कि पाकिस्तान के साथ उसकी कोई भी बातचीत द्विपक्षीय होनी चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में ये बात कही।
भारत पाकिस्तान का जो भी एंगेजमेंट होगा वो द्विपक्षीय तरीके से ही होगा। वार्ता और आतंकवाद दोनों साथ में नहीं चल सकता है। जहां तक आतंकवाद का सवाल है, हम ये बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो बातचीत होगी इस पे होगी कि भारत ने जो एक लिस्ट दिया था पाकिस्तान को कुछ साल पहले, उस लिस्ट में कई एक टेररिस्ट थे, उनको कब वो भारत को हवाले कर रहे हैं, इस बात पे बात होगी।
श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर पर कोई भी द्विपक्षीय चर्चा केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जाए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करने पर होगी। सिंधु जल संधि पर उन्होंने कहा कि यह तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं कर देता। श्री रणधीर जायसवाल ने बहुदलीय सांसदों के प्रतिनिधिमंडल पर कहा कि यह एक राजनीतिक मिशन है। प्रवक्ता ने कहा कि भारत का लक्ष्य आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एकजुट करना है। उन्होंने कहा कि भारत को उम्मीद है कि तुर्की पाकिस्तान से आतंकवाद का समर्थन बंद करने और आतंकी तंत्र के खिलाफ कार्रवाई करने को कहेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री तथा सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधि वांग यी ने बात की थी। जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने आज टोक्यो में जापान के नीति विचारकों के साथ बातचीत में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारतीय नीति के बारे में बताया। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में टोक्यो पहुंचने पर इस शिष्टमंडल ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा की। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व वाला शिष्टमंडल 4 देशों की यात्रा के पहले चरण में आज संयुक्त अरब अमीरात पहुंचा। दोनों देशों ने हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का संकल्प व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान कर रही हैं। समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गोवा के राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र में ध्रुवीय भवन और सागर भवन का उद्घाटन किया। ये भारत की वैज्ञानिक उन्नति के लिए बड़ा कदम है। यह विश्व स्तरीय केंद्र 55 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इन अत्याधुनिक केंद्रों में विश्व स्तरीय आइस कोल्ड लैब शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑक्सटीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने 3 दिनों तक मामले की सुनवाई की। बहस के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वक्फ के पंजीकरण की आवश्यकता 1923 और 1954 के पिछले कानूनों के अंतर्गत रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।